ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले किसी एक गुरु के आश्रम में एक गुरुकुल बहुत सारे विद्यार्थी हर वर्ष आते थे, परंतु उस गुरुकुल का एक नियम था। नियम ऐसा था कि 10 साल में विद्यार्थी को केवल एक ही बार बोलने का अवसर दिया जाता था और केवल 2 शब्द, और उन 2 शब्दों में उसे ये बताना होता था कि उसने क्या प्रगति की है, कितनी आध्यात्मिक उन्नति की है। वो स्कूल, वो गुरुकुल मौन का गुरुकुल था। ऐसा ही एक विद्यार्थी वहां आया, राज परिवार से। उसे भी इसी नियम से गुजरना था। कौन सा नियम? 10 साल में एक ही बार बोलना है, और कितना बोलना है? केवल 2 शब्द। दस साल पूरे होते हैं और उसे बुलाया जाता है यह पूछने कि उसने क्या उन्नति की है, क्या सीखा है वहां पर, क्या पाया है वहां पर। तो उसको जब पूछते हैं तो वो कहता है, बिस्तर सख्त, बिस्तर बहुत कठोर, बिस्तर कठोर, सख्त कहो या कठोर कहो, बस ये 2 ही शब्द कहते हैं। कि यहां का जो बिस्तर है बहुत कठोर है, मेरे लायक नहीं है, अच्छा नहीं है, इसका अर्थ। तो गुरु कुछ नहीं कहते, चुप। अगले 10 साल गुजरते हैं, फिर उसे बुलाते हैं, फिर उसको पूछते हैं क्या प्रगति की, क्या अनुभव किया, कोई समस्या तो नहीं आई? वो कहता है, खाना गंदा, यहां का जो भोजन है ठीक नहीं है, ऐसे भोजन में कहां से साधना होगी, ऐसे बिस्तर पर सो के कौन सुखपूर्वक और आरामपूर्वक साधना कर सकेगा। 10 वर्ष और गुजरते हैं, फिर से वो विद्यार्थी आता है, फिर से उसे पूछा जाता है कैसा है, क्या प्रगति हुई है, सब इशारों में। वो कहता है, घर जाना। कहता है, अब बहुत हो गया, अब नहीं रह सकता, अब घर जाना है। उसके गुरु कहते हैं 2 ही शब्द, पता था। गुरु कहते हैं पता था, और वो चला जाता है। 10 साल में एक ही बार अवसर है बात करने का, 10 साल में एक ही बार बोलना है, उसमें भी क्या निकला? कंप्लेंट, बहाना। ये नहीं कि यहां मैंने ये सीखा वो सीखा, यहां ये भी अच्छा है वहां वो भी अच्छा है, कंप्लेंट, शिकायत। अगर हमारा जीवन इसी तरह और इसी तरह के बहुत सारे बहानों से भरा हुआ है कि ये कारण है इसलिए हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते, ये समस्याएं हैं इसके लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकते, बिस्तर सख्त कठोर, खाना गंदा, घर जाना ये उसका परिणाम है। फिर अगर ऐसी चादरें हमने ओढ़ रखी है बहनों की, तो पुरुषार्थ का अंतिम संस्कार जल्दी ही हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन में हम आगे ही बढ़ते जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन की इस अनंत धारा में इतनी ही परिस्थितियां आ जाए, परंतु हमें वो परिस्थितियां न लगे, चुनौतियां न लगे, परंतु जैसे एक स्टेपिंग स्टोन, जैसे एक साधन हमारी उन्नति का वो बन जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि बजाय इसके कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये स्थान ठीक नहीं है, परिस्थिति ठीक नहीं, यहाँ के लोग ठीक नहीं, सब अच्छा नहीं है, वातावरण अनुकूल नहीं है पुरुषार्थ के, अध्यात्म के, परिस्थितियां विपरीत है, प्रतिकूल है, क्या ऐसी विषम परिस्थितियों में भी हमारा चित्त कंप्लेंट बहाने से न भरा होकर अहोभाव से भरा हो? हिंदी में और मराठी में शब्द है अहोभाव। अहोभाव अर्थात वह कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद का भाव, उस दाता के लिए धन्यवाद जो कुछ तूने किया है, जो कुछ तूने दिया है, जो भी हमारे साथ हुआ है और जो भी हमने पाया है, उसके लिए उसका परम धन्यवाद। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड हो ग्रेटिट्यूड का, वह कृतज्ञता का भाव, वह अहोभाव का कि हे प्रभु तूने हमें क्या क्या दे दिया। संसार की आत्माएं देखो क्या कर रही है और हम इस समय क्या कर रहे हैं, अभी इसी समय, राइट नाउ, ये जो समय है 7:17-18 हो रहे हैं, इसी समय संसार की आत्माएं क्या कर रही है, एक नजर दौड़ाओ। यहां हम बैठे कहां है, कौन सा ये स्थान है, इस स्थान को भी साधारण स्थान नहीं समझना। कौन सा स्थान है ये, स्वयं भगवान के महावाक्य जहां उच्चारण किए जाते हैं, स्वयं बाल ब्रह्मचारिणी, ऐसी पवित्रता देवियां जहां निवास करती है, जहां भगवान के ज्ञानामृत की चिंतन और चर्चा होती है, जहां विश्व कल्याण की प्लानिंग होती है, क्या वह स्थान साधारण हो सकता है? हम उस स्थान पे यहां आज बैठे हैं और संसार के लोग टीवी के सामने बैठे हैं, सिनेमा घरों में बैठे हैं, विकारों में डूबे हुए हैं, संसार की दौड़ में भाग रहे हैं। क्या ये भाग्य नहीं है? क्या इस भाग्य के लिए हमने उस भाग्य विधाता को धन्यवाद दिया है? क्या हमारे हृदय से भी ऐसी पुकार निकली है कि बाबा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमें जो दिया है, हमने तुमसे जो पाया है, उसके लिए, सब बातों के लिए कोटि कोटि अनंत बार धन्यवाद। तो सभी एक मिनट के लिए अलर्ट होके बैठेंगे और उस परमपिता परमात्मा को याद करेंगे। याद इस तरह करेंगे कि तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तू हमारे जीवन में आया, हमारी जीवन की इस शाम में, हमारे जीवन के इस आंगन में तुम आए और जीवन को ऐसा पुलकित कर दिया और भर दिया प्रेम से, आनंद से, ज्ञान से, शक्तियों से, गुणों से, इसलिए हमारी तुझसे कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। तू जो कहेगा वो हम करेंगे। ऐसा धन्यवाद का भाव लेकर हृदय से पुकार निकलने दो, आर्त पुकार, और उसको पूर्ण हृदय से धन्यवाद दो। हे प्राणेश्वर बाबा, तूने इस जीवन को क्या से क्या बना दिया, कहां विकारों के अंधकार में ये जीवन भटक रहा था। तूने हमें सच्ची राह दिखाई, कहां दुख और दर्द जीवन को डुबो रहे थे, सभी दुखों से, सभी पीड़ा से तूने बाहर निकाला। बाबा, तुझे पाकर मैं कृतकृत हुआ, हृदय आनंद से भर चुका है। अब कुछ मांगना नहीं, अब कोई शिकायत नहीं। स्वयं अव्यक्त बाप दादा मेरे सामने खड़े हैं, मैं उन्हें देख रहा हूं। कैसा दिव्य तूने ये जीवन बना दिया है, कहां व्यसनों में डूबे हुए थे, कहां परचिंतन और परदर्शन में जीवन बीत रहा था। हे प्राण व्यक्त बाप दादा, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। कैसी दिव्यता तूने इस जीवन में भर दी है, भक्ति में मांगी हुई सारी बातें तूने पूरी कर दी, जन जन के भक्ति का तूने आकर फल दिया है। हे हृदयेश्वर बाबा, हे प्राणों के प्राण, हे तन मन धन के स्वामी, हे चित्त चोर, कैसे ना तेरा धन्यवाद करूं, कैसे तेरा शुक्राना करूं। इतना सब कुछ तूने दे दिया है, कैसी पालना तूने दी है, क्या रिटर्न दो इस पालना का। हे मेरे मनमीत, आज मैं आत्मा ये संकल्प करती हूं आज से और अब से आप जो भी मुझे कहोगे, जो भी श्रीमत मुरली द्वारा प्राप्त होगी, उसे पूर्ण प्राण प्रण से मैं आचरण में लाऊंगा। बाबा के नैनों से अनंत शक्तियों की किरणें मुझ पे समा रही। बाबा ने अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रख दिया है और मुझे तिलक दे रहे हैं। बच्चे विजयी भवा, स्वयं भगवान के सामने यह प्रतिज्ञा और स्वयं भगवान की यह कृपा दृष्टि मुझ पर हुई है। फिर से बाबा को पदम गुना धन्यवाद देकर मैं आत्मा पुनः अपने इस देह के भान में आती हूं। ओम शांति। दिया सभी ने धन्यवाद बाबा को, माताओं ने दिया तो क्या कहा बाबा ने, क्या कहा, कुछ कहा, आवाज आई क्या उसकी? यहां से तो दिख रहा है ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही है, एक एक पर अव्यक्त फूल है। तो रोज दिन में एक बार और हो सके तो दो बार और हो सके तो तीन बार और हो सके तो कई बार क्या करना है, उसका धन्यवाद। इससे पहले कि इस टॉपिक की चर्चा करें, और दो काम हमें करने हैं, दो महत्वपूर्ण काम। उसके बाद में हम बहानों की चादर जो ओढ़ रखी है उसको फेंकेंगे। पहला काम जो भी रोज करना है, ये दो काम। जिन जिन आत्माओं ने हमें दुख दिया है, जिन जिन आत्माओं ने हमें सताया है, हमें ऐसा लगता है, जिन जिन आत्माओं ने हमारी निंदा की है, जिन जिन आत्माओं ने हमारी ग्लानी की है, जिन जिन आत्माओं ने अपशब्द बोले हैं, जिन जिन आत्माओं ने व्यंग बाण छोड़े हैं, जिन जिन आत्माओं ने हमारा जीना दुभर कर दिया है, जिन जिन आत्माओं ने हमारे विरुद्ध षड्यंत्र किए हैं, उनको क्या करना है? उनको क्षमा कर देना है, बेशर्त क्षमा। उन सभी आत्माओं के लिए हमारे मन में कोई बदले का भाव नहीं, हम विश्व कल्याणकारी है। हर व्यक्ति के प्रति हमारे मन में शुभ भावना और शुभ कामना भरी है। किसी के प्रति दुर्भाव नहीं, हरेक के प्रति शुभ भावना है। जो जे वांछिल तोते लाहो प्राणीदात, ऐसी भावना है सभी के प्रति। किसी के मार्ग में हम बाधा नहीं है, उन्होंने हमारे साथ जो कुछ भी किया है या हुआ है वो हमारा ही हिसाब किताब था। हमने ही किसी जन्म में ऐसा किया था, हमने ही उन्हें सताया था, हमने ही उनकी निंदा भी की थी। जिसने जो भी किया। हम महान हैं, हम पूर्वज हैं इस सृष्टि के, हम आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है। हम वो नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं, इसलिए क्या करना, उन सभी आत्माओं को अनकंडीशनल पार्डन, बेशर्त, बिना कोई शर्त के सबको क्षमा कर दो। दूसरा कार्य करना है, जिनको हमने सताया है जिनका हमने अपमान किया है, उनके मार्ग पर बाधा बने हैं, जिनकी हमने निंदा की है, व्यंग्यवाण छोड़े हैं, टीका की है, टिप्पणियां की है, कमेंट्स की है, दोषारोपण किया है, फंसाया है, धोखा दिया है, जाने में या अनजाने में, शायद किसी जन्म में हमारी वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। हम जब कहीं राजा थे और हमने किसी देश पर आक्रमण कर दिया था और वहां के राजा को हरा दिया था और कितने सारे ढेर सारे सिपाही मर गए थे, शायद हम ही निमित्त थे। किसी को शारीरिक यातना पहुंचाई है, किसी को मानसिक यातनाएं पहुंचाई है, सताया है किसी को, तो क्या करना है उन आत्माओं से? माफी? और हम कोई इतने छोटे हो गए जो किससे माफी मांगे? क्या यह हमारी गलती थी? गलती उसी की थी। हमें माफी मांगनी होगी। जब तक हमें वो माफ नहीं कर देते, हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते। जब तक उनकी दुआएं हमें नहीं मिलती, उनके मन में हमारे प्रति बदले का भाव है अंदर, अवसर की तलाश में है कब हमसे बदला ले, क्रोध है दबा हुआ ज्वालामुखी की तरह, फ्रोजन वोल्केनो, उन आत्माओं की दुआएं हमें चाहिए इस पुरुषार्थ के मार्ग में। तो उन आत्माओं से क्या करेंगे? क्षमा मांगेंगे। तो चलो सभी वापस माफ करने और क्षमा मांगने।
निर्मल वाणी,
मैं फरिश्ता इस देह से निकलकर जा रहा हूं ऊपर, सूक्ष्म वतन की ओर। यह पंच तत्वों का देह यहीं छोड़कर मैं फरिश्ता चल रहा हूं ऊपर। आकाश से परे, तत्वों से पार, सूक्ष्म वतन, अव्यक्त बाप दादा सामने है और बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम पूर्वज हो, इस सृष्टि के आधार मूर्त आत्मा, यह वरदान पाकर मैं आत्मा देख रही हूं, असंख्य आत्माएं मेरी आंखों के सामने हैं, ये वो सब आत्माएं हैं जो मैं समझती रही, इन्होंने मुझे दुख दिया, सताया, दुर्व्यवहार किया, कुवचन बोले, षड्यंत्र किए, धोखा दिया, मेरी निंदा की, इन सब आत्माओं को मैं देख रहा हूं और परमात्मा वचन मुझे याद आ रहे, मैं इस विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूं, महान पूर्वज आत्मा हूं, आज मैं इन सभी आत्माओं को क्षमा करती हूं, अब मेरे हृदय में इनके प्रति विशुद्ध प्रेम और प्रेम है, बस इनके प्रति जो क्रोध भाव था वो समाप्त हुआ, बदले का वह भाव शुभ भाव में बदल गया, ये सभी आत्माएं मुझे अति प्रिय मित्र की तरह भास रही है, आहा, कैसा अद्भुत हल्कापन है ये, अब मैं देख रही हूं दूसरी ओर अनगिनत आत्माएं, ये वो आत्माएं हैं जो अभी इतनी क्रोध में हैं, यही ये सब आत्माएं हैं जिनको मैंने बहुत सताया, असहयोग दिया, धोखा दिया, दुर्व्यवहार किया, हे आत्माओं मुझे क्षमा करो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, धीरे धीरे उन आत्माओं का क्रोध शांत हो रहा है, उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ रही है और प्रेम से उनका चित्त भर गया है, अनुभव कर रहा हूं कि उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया, अब उनकी दुआएं मुझ पर बरस रही है, मैं फरिश्ता संपूर्ण बोझ रहित अनुभव कर रहा हूं, इसी हल्केपन की अवस्था में अब मैं आत्मा धीरे धीरे फरिश्ता स्वरूप में पुनः इस देह में प्रवेश करती हूं। ओम शांति। माफ कर दिया सभी को कि बचा के रखा है अवसर की तलाश, और माफी मांग ली सभी ने, मांग ली ना। कितने क्रोधित थे देखा उनका चेहरा, छह मास तक ये अभ्यास करना है आज से रोज, छह मास तक आज से रोज अमृत वेला 24 घंटे में एक बार, हो सके तो दो बार। रोज अमृत वेला आत्माओं को विमर्श करो और उनसे बात करो। आत्मा ने इतने विकर्म किए हैं कि वो विकर्म ही उसे पुरुषार्थ नहीं करने देते, इतना बोझ है उसके ऊपर। इसी बोझ के कारण अमृत वेला नींद आती है। कैसे नींद आएगी, इतनी लोगों की बद्दुआएं साथ चल रही है। हम तो भूल भी गए, कितनों को फंसाया था याद ही नहीं, परंतु वो नहीं भूले। कितनी बार कितनों के हृदय को तोड़ दिया, हृदय विदीर्ण कर दिया अपने शब्द भेदी बाण से, अपने मुख से चलाकर ऐसे तीर चलाए हैं कि अब तक तीर गड़ा हुआ है आत्माओं के हृदय में, खून अब भी निकल रहा है। और हम चाहते हैं हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो और बहुत अच्छी योग की अवस्था हो जाए और जीवन में कोई विघ्न ना आए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तस फल चाखा। जो जो कर्म किए हैं छूटेगा नहीं कोई भी। अज्ञान काल में एक का एक गुना और ज्ञान में आने के बाद एक का 100 गुना दंड, ये पता है ना नियम यहां का। तुम्हें अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, 63 जन्म के विकर्मों को विनाश करने में इतना समय नहीं लगता है जितना ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए विकर्मों को विनाश करने में लगता है। इसके लिए आज से कोई बहाना नहीं, तो इस बहाने की चादर को फेंकना है। कौन कौन से बहाने हैं? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चार भागों में इसको विभाजित करते हैं। सबसे पहले ज्ञान के बहाने कौन कौन से हैं? मुरली में न आने के बहाने कौन कौन से हैं? अब बताओ। मेहमान आ गए, निकल ही रहे थे कि मेहमान आ गए, और टाइम क्या, टाइम नहीं है, पानी, बारिश आ गई, निकल ही रहे थे, बारिश आ गई, अच्छा नल चला गया, और दूध वाला, अच्छा तो पर कितना टाइम लगता है दूध वाले को दूध लेने में, क्या गिर गया, बच्चा रो रहा है, और हाँ वो मित्र में, वो मेहमान में सब आ गया, और काम बहुत हुआ, नींद पूरी नहीं हुई, हाँ तबीयत ठीक नहीं है, रात को ही लग रहा था थोड़ा बुखार जैसा, ऐसे हाथ लगा के, थर्मामीटर में नहीं आता है, ऐसे लगाओ तो गरम गरम लगता है, खुद ही ऐसे लगाओ तो, और बाबा की तो, बाबा को भी तो पता है कि हम बीमार है, खुद ही को सर्टिफिकेट हमने दे दिया। हाँ? हर दिन वही वही बातें, बाप आए हैं पतित को पावन बनाने, तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, विनाश सामने खड़ा है, दिव्य गुण धारण करने हैं, सारा मदार है योग पर, सारा मदार है पुरुषार्थ पर, परम धाम में जाना है, अब बाप आया है तुमको लेने के लिए, मौत का बाजार गर्म होने वाला है, मौत सामने खड़ा है, विनाश होगा इसकी गारंटी है। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति, बस क्या करना है, वही तो है, बाद में पढ़ लेंगे, दिन में टाइम बहुत है, पढ़ लेंगे जाकर बीच में, और रुको अब इधर नहीं, माताओं की तरफ से चाहिए, इधर ज्यादा है बहाने। मुरली में न जाने के कौन कौन से कारण है, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी अपने अपने कारण बता दो बस, तो लिस्ट पूरी हो जाएगी। बच्चों का क्या है, टिफिन बनाना है। अच्छा, बच्चों का टिफिन बनाना है, बच्चों की एग्जाम, एग्जाम आपकी है या बच्चों की, बच्चों की ना, ठीक है। और पढ़ाई लेनी है, और ऑफिस को जाना है, आपको सारे कारण पता है, अनुभवी है कन्या, सब स्टडी किया है, कौन कौन क्या क्या बहाने बनाते हैं, और फटाफट बताओ। बहाने नहीं, अच्छा बहुत अच्छा, बहाने है नहीं तो बहुत अच्छा, फिर भी जो है वो बताओ। काम बहुत था, थकान सी लगती है, सेंटर बहुत दूर है, ऑटो नहीं मिला, मूड नहीं, नहीं मूड की बात नहीं है माताओं का, इधर हो सकता है, इधर नहीं है, इधर तो मूड बहुत अच्छा है, पर कारण ही ऐसे है, क्या करे, पढ़ाई है, पढ़ना है, उसको चाय बनाना पड़ता है। अच्छा, और त्योहार आए तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, दिवाली का फराड़ क्या क्या बनाना पड़ता है, पीस ऑफ माइंड में देख लेंगे, आते रहता है टीवी पर, बड़ी बहन जी गए हैं मधुबन, अब छोटी छोटी बहनें हैं, हम क्या इतनी छोटी छोटी बहनों से मुरली सुनेंगे, हम इतने पुराने, मुरली किसकी है, बहन की है या भगवान की है। त्योहार में काम बहुत रहता है, और क्या होता है त्योहार में, मेहमान थोड़े ज्यादा आते हैं, साफ सफाई करनी थी, हाथ दुख रहा है, पाँव दुख रहा है, पेट दुख रहा है, थकान, पैर में दर्द, क्या अकेले नहीं जा सकते, कोई चाहिए, साथी चाहिए, हाँ, पोतरे धोतरे बीच में डिस्टर्ब करते हैं, और उनको संभालने के लिए चाहिए कोई, और घर में कोई नहीं है, घर अकेला नहीं छोड़ सकते, ताला नहीं लगा सकते, कई लोग डर रहता है हमेशा ही, घर को ताला कभी नहीं लगता है, एक जन चाहिए घर में, घर में कोई नहीं था इसके लिए रुकना पड़ा, चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी है कहीं कहीं, हाँ वो हो गया, और चश्मा टूट गया जिसे करना होता है उसके सामने कोई बहाने नहीं, जिसे पहुंचना है, जिसे जाना है, वो कैसे भी करके पहुंच जाएगा, जहां चाह है वहां राह स्वतः ही होगी, इन बहानों के आड़ में हम अपने आलस्य और पुरुषार्थ को, अपने आलस्य और अलबेलेपन को छिपाते हैं। अगर यह नशा हो जाए कि कौन आया है, कौन पढ़ा रहा है, किसकी ये वाणी है, समय कौन सा चल रहा है, पहले ही आधा जीवन तो संसार में बीत गया, अब समय कितना बचा है, समय कौन सा है, अगर इसकी अवेयरनेस, इसका ज्ञान, इसकी स्मृति अगर चित्त में है, तो ये अलबेलापन कभी नहीं आएगा, ये बहाने हम कभी नहीं बनाएंगे। अगर नहीं जाते हैं तो स्वीकार कर दो उसको, पहले तो बहाने नहीं बनाना है। भगवान को सत्य और साफ हृदय पसंद है, जिसका हृदय स्वच्छ है वहां भगवान है। रामायण में दिखाते हैं, विभीषण राम की शरण में आता है, सभी वानर और सब लोग कहते हैं इसको बिल्कुल मत लेना क्योंकि ये शत्रु के दल से आया है। कहा कितना भी हो है तो राक्षसी ना, है तो रावण का ही भाई, हो सकता है ये रावण की कोई चाल है जो विभीषण को भेज दिया हमारा भेद जानने के लिए। सभी राम से कहते हैं बिल्कुल मत लेना, परंतु राम क्या कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल हृदय है, जो निर्मल हृदय से मेरी शरण में आया है, निर्मल हृदय निर्मल मन जन मो सो मोहि पावा, मुझे वो प्राप्त करता है जिसका चित्त निश्चल है। मोहि कपट, कपट से भरा हुआ चित्त मुझे पसंद नहीं, जो षड्यंत्र करते रहते हैं, कपट छल करते रहते हैं, छिद्र, छिद्र अर्थात दूसरों के दोष देखना, फॉल्ट फाइंडिंग। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है एक जगह, वह जो संपूर्ण पवित्र है केवल वही और केवल वही उस ईश्वर को देख सकते हैं, पा सकते हैं। तो ऐसा हृदय जिनका पवित्र है, जिनका हृदय साफ है, स्वच्छ है, साफ दिल मुराद हासिल, सच्ची दिल पर साहेब राजी। सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी परंतु डूबेगी नहीं, सत्यमेव जयते। सच तो विठो नच, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। क्या ऐसा सत्यम शिवम सुंदरम का भाव हमारे हृदय में है? या विकार भरे है, झूठ भरा है, धोखा भरा है, दंभ भरा है, पाखंड भरा है, वहां प्रभु नहीं आते। जब वो कह रहा है कि मैं आया हूं और मैं जो सुना रहा हूं वही सत्य ज्ञान है, आज तक जो भी सुना उसे भूल जाओ, अब मैं जो सुना रहा हूं वह सुनो, जज करो मैं जो सुनाता हूं वह राइट है या संसार की आत्माओं ने जो सुनाया वह राइट है, शायद हमें निश्चय ही नहीं है। अगर ऐसा निश्चय हो तो एक दिन भी नहीं छूटेगी। दादी जानकी जब ज्ञान में आई तो दादी को इतनी चिंता हो गई कि मेरे से पहले कितने लोग आ गए, मैं क्या करूं अब। बाबा के पास पहुंची और बाबा को पूछा, बाबा मैं क्या करूं, कैसा पुरुषार्थ करूं, मुझे इतना लेट हो गया है। कब? 1937-38 में। तब दादी कह रही है, जब बाकी दादी आ गई थी और दादी जानकी आई फिर थोड़े समय के बाद, बाबा ने कहा, बच्ची अगर तुमको एकदम आगे जाना है तो 12 बार मुरली पढ़ो। दादी ने कहा, अगर मैं 25 बार पढ़ू तो, 24 बार पढ़ू तो, पढ़ी होगी ना तब, तब तो आज स्थिति भी प्राप्त है और सम्मान भी प्राप्त है। जो स्थिति आज प्राप्त है, कितना बड़ा त्याग है उसमें और कितनी बड़ी तपस्या है उसमें। चाहे कुछ भी हो कोई बहाने नहीं, तो ज्ञान के बहाने। दूसरा योग, योग में क्या क्या बहाने हैं? नींद ही बहुत आती है, क्या करें, योग तो करना चाहते हैं, बैठे और चालू नींद, कोई इधर गिरता है, कोई उधर, किसी को पता ही नहीं कहां गिर रहे हैं। एक भाई था, वो ऐसे गिरता था जमीन पर, नीचे एकदम नीचे जमीन तक बैठे बैठे, उसको पूछा क्या कर रहा, वो कहता था जमीन को सकाश दे रहा हूं, धरती को सकाश देना, पांच तत्वों को सकाश देने के लिए कहा ना, तो ऐसे गिरता था, अच्छी सकाश जाती है थोड़ा नीचे गिरने से। क्या कारण है योग में नींद का? शायद भोजन लेट कर रहे हैं, शायद भोजन बहुत भारी कर रहे हैं, शायद भोजन बहुत गरिष्ठ कर रहे हैं, शायद नींद कम हो रही है, शायद दिन भर में बहुत थकान हो रही है, शायद कोई शारीरिक बीमारी भी हो सकती है। कारण को तो ढूंढो, क्यों हो रही है? और यदि कुछ भी कारण नजर नहीं आ रहे हैं, सब ठीक है, तो सूक्ष्म पाप है कोई ना कोई, किसी ना किसी जन का पाप बोझ। इसके लिए जो अभ्यास बताया, क्या करो, आत्माओं को माफ कर दो। किसी की सूक्ष्म बद्दुआएं चल रही है साथ साथ, इसलिए नींद आ रही है। सारे कारण हटाने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है तो ये हो सकता है। दिनचर्या भी ठीक है, कोई बीमारी भी नहीं है, भोजन भी हल्का ही है, जल्दी खा रहे हैं, नींद भी पर्याप्त है, शारीरिक बीमारी नहीं, सब अच्छा है, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, सब कुछ सेटल है, कोई विरोध नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, सबसे अच्छे संबंध है, फिर भी योग में बैठते ही निद्रा का प्रकोप, चेक करना है क्या है, क्यों नींद आती है। और योग में बहाने, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, शायद दिन भर व्यर्थ में गुजर रहा है, तब तो जाके योग में व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, शायद दिन भर परचिंतन चल रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसकी ननद और उसकी बहू, क्या कर रहे हैं ये लोग, ये साड़ी कहां से ली, दहेज में क्या क्या मिला, प्रेजेंट क्या क्या मिले, बहुत व्यर्थ में है बुद्धि। विधि पता नहीं है, अज्ञान है, योग अज्ञान, योग करना कैसा है वही पता नहीं, बस मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। क्या नवीनता, योग में अगर नवीनता नहीं है तो भी नींद, रोज वही योग, मैं आत्मा हूं। 10 साल पहले जो कमेंट्री सुनी थी ज्ञान में आए थे तब, वही चालू है अब तक भी। जब तक योग में नवीनता नहीं, उस कमेंट्री में नवीनता नहीं, उस सेल्फ टॉक में नवीनता नहीं, स्वयं से बातें करने में नवीनता नहीं, ज्ञान की समझ में नवीनता नहीं, और क्या करना है योग में वही पता नहीं, तो कैसे योग लगेगा। योग में बैठे और दिन भर के सारे विचार आने लगते हैं, जितना रोको मन को उतना और वही विचार आता है, जितना मन को समझाओ इसको याद नहीं करना है, मन का स्वभाव ऐसा है कि वही याद आता है। एक व्यक्ति था, वो एक गुरु के पीछे पड़ गया और कहा कि मुझे मंत्र दो, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, मुझे मंत्र चाहिए, मुझे पता है आप बहुत पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष है। उसने कहा मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, भागो यहां से। उसने कहा नहीं, वो पत्थर फेंकता था गुरु, पर जो साधु संत जितने ज्यादा पत्थर फेंकते लोग और ही उनके पीछे पड़ते हैं, ये स्वभाव है मनुष्य का कि जरूर इनके पास कुछ है, तब तो ये भगाते हैं दुनिया वालों को। वो कहता है नहीं मुझे चाहिए मंत्र। गुरु को एक दिन कहते हैं ठीक है मैं देता हूं, और एक चिट पेपर पर लिखकर उसे मंत्र देते, ये है मंत्र, इसे कल सुबह स्नान करने के बाद 5 बार पढ़ लेना, हो गया। वो शिष्य इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, मिल गया मंत्र सर्व सिद्धि प्राप्त करने का, और जाने निकलता है सीढ़ियों से। गुरु कहते एक मिनट, एक बात याद रखना, जब मंत्र पढ़ोगे बंदर को याद मत करना, बस बाकी सब ठीक है। वो कहता है बंदर, मैंने आज तक कभी किसी बंदर को याद नहीं किया, मेरा बंदरों से कोई संबंध नहीं है, कभी आज तक सोचा भी नहीं बंदरों के बारे में, मैं क्यों याद करूं बंदरों को। तो वो वहां से निकलता है, रात तो हुई होती है, तो देखता है जैसे पीछे से कोई आ रहा है, शायद बंदर तो नहीं, पीछे मुड़कर देखता है, फिर और आगे बढ़ता है, झाड़ियों में कोई दिखता है, लगता है शायद वहां कोई बंदर है, फिर जाता है आगे, फिर जाता है, सोचता है ये बंदरों से मेरा क्या लेना देना, मैंने आज तक कभी सोचा नहीं, मेरे ना कोई रिश्ते संबंध में लगते हैं, दूर दूर से कोई वास्ता नहीं, मैं क्यों याद करूं बंदर को, मुझे तो ये अपने मंत्र पर ध्यान केंद्रित करना है। छोड़ो, रात में घर पहुंचता है तो देखता है जैसे दरवाजे पर बंदर बैठा है, फिर अंदर घुसता है और सो जाता है, सोता है तो स्वप्न में बंदर ही बंदर। सुबह उठता है, स्नान करते करते कंधे पर बंदर, निकलता है बंदर, फिर सोचता है इसको बाजू हटो और अभी मंत्र जाप करना है, मंत्र जाप करना बैठता है, दरवाजे पर बंदर, खिड़की पर बंदर, बंदर ही बंदर, क्या करे। वापस गुरु के पास आता है, ये लो मंत्र तुम्हारा, इस जन्म में ये संभव नहीं है क्योंकि मंत्र और बंदर एक हो गए, अब अगले जन्म में आऊंगा अब मंत्र लेने, इस जन्म में असंभव है। मन को जो बात कही जाए कि नहीं करो बिना समझे, अगर उसको बताया जाए वही करता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है व्हाइट बेयर फिनोमिनन। व्हाइट बेयर अर्थात भालू। एक्सपेरिमेंट किया गया विदेश में, एक ग्रुप को कहा जाए कि सफेद रंग के भालू को याद नहीं करना आधा घंटा। अब सफेद रंग का भालू भी होता है, लोगों ने कहा हमने आज तक भालू ही नहीं देखा, उसमें भी सफेद भालू तो बिल्कुल ही नहीं देखा। और फिर टेस्ट किया गया कि सबने कहा केवल सफेद ही भालू दिखता रहा आधा घंटा। व्हाइट बेयर फिनोमिनन, आयरनिक प्रोसेस थियरी इसको कहा जाता है साइकोलॉजी में। तो ये विधि नहीं है कि उसको कह दो कि ये नहीं करना, बस वो वही करेगा। उसका अन्वेषण करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन, उसका पूरा जान लेना पड़ेगा। अभी किसी को यहां से घर में जाते समय ये संकल्प आता है कितनी अच्छी जिलेबी मार्केट में बन रही है दुकान में, थोड़ी सी खा ले, किसी को विचार आता है? कितनी अच्छी सुगंध आ रही है कचौरी की, किसी को लगता है ऐसा? थोड़ा खा ले, क्यों? हाँ, होटल के पास जा रहे हैं पर ऐसा लगता है इतना सुंदर एसी रेस्टोरेंट, वहां जाके आज का लंच यहीं करें, क्यों नहीं लगता? क्योंकि रिजेक्ट कर दिया है माइंड ने, ये अब हमारा मार्ग ही नहीं है, अब हमें कुछ लेना देना ही नहीं है इससे। क्या करना है? क्या विकारों को ऐसा रिजेक्ट कर दिया है, व्यर्थ को ऐसा रिजेक्ट कर दिया है, निगेटिव को ऐसा रिजेक्ट कर दिया है? जैसे भोजन को कितनी आसानी से सबने रिजेक्ट कर दिया, अब किसी के मन में संकल्प नहीं आता है कि बाहर की जिलेबी जाके खाऊं, खाना भी है तो घर में बनाएंगे, वहां की नहीं खानी है। जैसा यहां हो गया वैसा ही व्यर्थ के लिए हो जाए और निगेटिव के लिए हो जाए और विकारों के लिए हो जाए। एक ही बार तो त्याग किया कि रोज रोज सोचते हैं अमृत वेला आज मैं बाहर की जिलेबी नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, सेंटर पर जाऊंगा पर उस दुकान की तरफ बिल्कुल नहीं देखूंगा, दूसरे रास्ते से जाऊंगा। ये कोई करता है? क्यों? कितना पक्का हो गया है ये। मेडिकल का कोई स्टूडेंट है, वो ये सोचता है रोड कैसे बनाऊं, उसे क्या लेना देना, उसका सब्जेक्ट ही नहीं है। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट ये सोचता है कि इस बीमारी की क्या ट्रीटमेंट है, उसका सब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट उसका इंजीनियरिंग है। लॉ का स्टूडेंट कभी ये सब नहीं सोचता है कि मेडिकल के कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है। व्यर्थ हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, निगेटिव हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, विकार हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? हमारा विषय ही नहीं है, हमारा टीचर हमको जो पढ़ा रहा है वो पढ़े। मेडिकल का स्टूडेंट रोड कैसा बनाना जानकर क्या करेगा, उसको पेशेंट ठीक करने हैं, रोड नहीं। जब वस्तुओं की और चीजों की व्यर्थता का पता चल जाता है स्वतः ही त्याग होता है। शायद अभी भी रस है उनमें, अभी भी अच्छा लगता है, कानों को बहुत अच्छा लगता है, किसके घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ताक झाक। अगर ऐसा दिन बीत रहा है तो योग कैसे लगेगा? अगर मन में वासनाएं दबी बैठी है तो योग कैसे लगेगा? परिष्कार नहीं किया है, प्यूरिफिकेशन नहीं किया है अब तक मृत्यु का, तो कैसे योग लगेगा? शुद्ध नहीं हुआ है हृदय, व्यर्थ में बहुत रस है, देखो उनको क्या है ये व्यर्थ, उनको समझो उससे क्या नुकसान होता है, लिस्ट बनाओ ये संबंध ये व्यर्थ ये व्यक्ति भी हो सकता है उसमें, ये बंधन से क्या क्या मुझे नुकसान हो रहा है, ये टीवी ये इंटरनेट ये सोशल मीडिया क्या क्या मुझे नुकसान हो रहा है, कितना मेरा समय चुरा कर लेके जा रहे हैं ये। संगम युग पर समय का सदुपयोग करना है, समय को चुराना है, जहां जहां से समय मिले ज्ञान योग में लगाना है, जहां जहां से समय मिले सेवाओं में लगाना है, तो योग में बहाने। तीसरा, धारणाओं में बहाने, दिव्य गुणों की धारणा, जहां पहले से ही बहुत कीचड़ा भरा है वहां स्वच्छ जल कैसे आएगा? एक एक दिव्य गुण या सारे ही दिव्य गुण, जैसे जैसे हमारा ज्ञान और योग बढ़ते जाता है वो सारे स्वतः ही आ जाते हैं। और पुरुषार्थ भी करना है, आह्वान करना दिव्य गुणों का, एक एक दिव्य गुण का, कौन सा गुण मुझ में नहीं है, संयम नहीं है, वाणी पर कंट्रोल नहीं है, कम बोल स्पष्टीकरण ज्यादा, आज का वरदान। बहुत बोलने की आदत है, जोर से बोलने की आदत है, जोर से हंसने की आदत है, आवाज कर कर चलने की आदत है, एंट्री करते हैं तो धड़ाम से दरवाजे की आवाज करते हैं। एक जर्मन फिलोसोफर एक बार भारत आया एक गुरु से मिलने, बहुत उसका नाम उसने सुना था, रहस्यवादी ऐसा एक गुरु, उसको मिलने आया। आते ही उसने, गुरु अंदर बैठा था दरवाजे पर, जोर से अपने जूते निकाले और पटके, जैसे नेचुरल करते हैं, जूते डाले, जोर से दरवाजा खोला और अंदर गया और गुरु से कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। गुरु ने कहा पहले जाकर जाओ उस जूते और दरवाजे से माफी मांगो फिर आना। उसने कहा व्हाट इज दिस, उनमें क्या कोई प्राण है या जीव है या कोई वो चेतन है जो मैं माफी मांगू उनसे, उन स्थूल और जड़ वस्तुओं से? उसने कहा जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे मैं बात नहीं करूंगा, जा सकते हो। वो अब जर्मनी से भारत में केवल उसी से मिलने आया था, मजबूरी थी, गया और जूतों से माफी मांगा, हे जूते मुझे माफ कर दो, अगली बार से नहीं पटकूंगा तुम्हें, हे दरवाजे मुझे माफ कर दे। उस जर्मन फिलोसोफर ने अपने जीवन चरित्र में लिखा है, उस जर्मन दार्शनिक ने, कि जैसे ही मैंने उस जूते को और दरवाजे को माफी मांगी एक अद्भुत सा भाव मेरे अंदर प्रकट हो गया, एक अद्भुत आनंद मेरे अंदर आ गया, जबकि मुझे पता है वो स्थूल वस्तु है उनमें प्राण नहीं है, फिर भी दिव्य गुणों की धारणा। मम्मा जब धरती पर चलती थी तो आवाज नहीं था बिल्कुल भी, इतनी धीरे चाल, इसलिए वो सारे दिव्य गुण हम में आ जाए। कैसे बोल रहे, कैसे चल रहे, कैसे खा रहे, कैसे पी रहे, कैसे सो रहे, कैसे उठ रहे हैं, वो सारे ही दिव्य गुण। चौथा, सेवा। सेवा में कौन से बहाने हैं? बहुत है। कौन कौन से? समय नहीं है, टाइम, और सेवा बहुत है, सेवा करने वाले भी बहुत है, और तबीयत नरम है, शरीर साथ नहीं देता है, थकान है, कमजोरी लगती है। हाँ, क्या नहीं आता? झाड़ू मारने नहीं आता है, झुकना नहीं आता है, चलना नहीं आता है, सेवा करने के बाद दर्द होता है, और टकराव, संस्कारों में टकराव, वो आत्मा अच्छी नहीं लगती, उसको देखते ही यहां कुछ कुछ होता है, दर्द, भारीपन, धड़कन बढ़ती है। हाँ, ये हमारा काम नहीं है, किसी और को बोलो। हाँ, कौन VIP? हम। हाँ, हम VIP है, ये काम हमारा नहीं है, हमारी सेवा कुछ और है। और हाँ, मैं ही करूँ क्या? दूसरे भी तो है, हमेशा मुझे ही क्यों कहा जाता है? और मधुबन में एक भाई है, उन्होंने एक बार अनुभव सुनाया था, वो जिस डिपार्टमेंट में थे उस डिपार्टमेंट में इतना सारा काम था, अभी उस डिपार्टमेंट में कम से कम 10 लोग हैं एक डिपार्टमेंट में, उस समय एक ही वो भाई सब कुछ करते थे, एक ही सारी सेवा है उस डिपार्टमेंट की। दादी प्रकाशमणि ने एक बार देखा और दादी ने कहा, कोई हैंड की तुम्हें आवश्यकता है, कोई तुम्हारे साथ रहना चाहिए। तो उसने क्या कहा पता है? दादी, मैं अकेला ही ठीक हूं, भाग्य बांटना नहीं चाहता। भाग्य बन रहा है मेरा, भाग्य बट जाएगा अगर कोई दूसरा आ जाए तो। जबकि जरूरत थी, सुबह से लेकर 3 बजे से लेकर हार्ड सर्विस, बड़े बड़े बर्तन उठाना से लेकर सब कुछ, दोपहर में कोई रेस्ट नहीं, भाग्य बट जाएगा, ये उत्तर था उनका। और हम कहते हैं, मैं ही करूं क्या सब, मैं ही दिखता हूं क्या? हम करते करके हमको ज्यादा ही काम में लगाते हैं, दूसरे तो करते ही नहीं। पर ये कोई बहन जी नहीं कह रही है, ये किसी सेंटर की सेवा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, भाग्य किसका बन रहा है? अरे, हम सेवा इतनी करते कोई हमारा नाम भी नहीं लेता है, नाम तो ले कम से कम, बहन जी हमारा नाम तो ले कि हमने ये सेवा की। क्या उन्होंने नाम लिया मतलब हमारा जमा हो गया? कोहली तो देना चाहिए, चाय तो पूछना चाहिए, पानी तो पूछना चाहिए, सुबह से लगे हुए भोजन का तो पूछो, कब जाएंगे और कब भोजन बनाएंगे। सेवाओं में बहाने, हम सेवा क्यों कर रहे हैं, किसकी ये सेवा है, किसका भाग्य बन रहा है? हम जो कुछ भी कर रहे हैं संगम युग पर, वास्तव में अपने लिए ही कर रहे हैं, सेवाएं भी जो कर रहे हैं अपने लिए ही कर रहे हैं, हमारा ही भाग्य बन रहा है। पाप कितने हैं, विकर्म कितने हैं, बोझ कितने हैं, कैसे मिटेगा? संडे की मुरली, डबल विदेशियों से मुलाकात, तन मन धन, धन की भी मार्क्स है, एक का पदम गुना। वैसे भी आज की मुरली लास्ट लाइन, सुबह की साकार मुरली, किसी की दबी रहे धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट जाए, किसी की आग जलाए, आग, चोर, राजा और धूल, चार है। राजा अर्थात इनकम टैक्स ले जाएंगे एक दिन, धूल मिट जाएगा सब कुछ इस धूल में, चोर, चोर तो चोर, चोर किसके घर जाता है, गरीब के घर जाता है क्या, झोपड़ी में जाता है क्या कभी चोर? राधात जी महाल्या मज्जा व शब्द आल्या, दारात नाही दोर्या या झोपड़ीत माझ्या, महाली मऊ तिजोरी कंदील श्याम डाने आम्हा जमीन माने या झोपड़ी तो माझा। झोपड़ी में नहीं जाते हैं जिनके पास बहुत माल दबा के रखा है, चोर वहां जाते हैं। किसी की चोर लूटे और किसी की आग जलाए, आग तो लगेगी, भंभोर को आग लगेगी, फिर क्या करोगे? 500 की नोटे तो बंद हो गई। एक दिन ऐसा आएगा कि सारी ही नोटे बंद हो जाएगी, तो तब क्या करेंगे? कहां से एक्सचेंज करेंगे और कहां क्या करेंगे? और वो होगा, सब होगा, जो सोचा नहीं था वो भी होगा। इसलिए सेवा हम स्वयं के लिए कर रहे हैं। तन से करो, मन से करो, और धन से करो, और जन से करो, सब तरीके से, सब प्रकार से करो। मनसा वाचा कर्मणा, जब तक नहीं करेंगे, अपने जीवन को सफल नहीं करेंगे, धन्यता को उपलब्ध नहीं होंगे। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों में भी कोई भी बहाना नहीं। एक दूसरा वर्गीकरण और भी है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बहाने। शारीरिक बहाने हमने देख लिए, मानसिक बहाने भी उसमें आ गए, कुछ आध्यात्मिक बहाने हैं, स्पिरिचुअल एक्सक्यूजेस, वो कौन से? ड्रामा में नहीं था, हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमारा भाग्य इतना ही है, ये मेरे साथ ही होना था, हमारा हिसाब किताब है। हम चाहते हैं कि दूसरे आगे बढ़े, दूसरे आगे जाए, दूसरे ज्यादा सेवा करे, धन की भी सेवा, बाकी की, सबका भाग्य बनाने दो। हम तो क्या, आखिर में सबको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा पुरुषार्थ करो, अमृत वेला उठो, आगे अच्छा पद पाओ, मधुबन में जाओ, भट्टी में जाओ, हम हैं इधर, फुल सपोर्ट करते हैं। पैसे वगैरह चाहिए तो बोलना, पैसे देंगे, सब देंगे, टिकट बना के देंगे, आप लोग आगे जाओ। इसी में हमारा पुण्य है, ये आध्यात्मिक बहाने हैं, स्पिरिचुअल एक्सक्यूजेस। तो ना तो तन के बहाने और ना तो मन के बहाने और ना ही आध्यात्मिक बहाने। ये नहीं कहा जा सकता है कि हमें ये पता नहीं था, रोड पे चलते हुए गलत मार्ग से चले तो पुलिस पकड़ता है, वन वे है और हम घुस गए और पुलिस हमको पकड़ ले, अगर हम उनको कहें मुझे पता ही नहीं था, छोड़ देता है? अगर बोल देते हैं मुझे पता ही नहीं था, मैं तो अभी अभी आया हूं, गांव में रहता था अब तक, शहर का मुझे कुछ पता ही नहीं नियमों का। इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नो वन। कानून, नियम, मर्यादा है, हमें पता नहीं थी, ये अगर कहा तो छूटेंगे नहीं या छोड़ देगा भगवान कल की संडे की मुरली। लॉ इज लॉ। अभी प्राप्तियों का समय है, फिर पश्चाताप का समय होगा, अभी प्रेम स्वरूप है बाबा, फिर धर्मराज होगा, चीफ जस्टिस। तब कहोगे बाबा के सामने, बाबा कहेंगे बोलो क्यों नहीं किया पुरुषार्थ, दूध वाला उसी समय आ गया था, क्या करूं, ऐसे बताएंगे बाबा को? क्या कारण बताएंगे उसको? इसके लिए आज कितनी तारीख है, 20, बाबा आ रहे 23 को, 3 दिन, पावरफुल अमृत वेला, पावरफुल मुरली का अध्ययन, दिव्य गुणों की धारणा और जितनी सेवा हम कर सके आखिरी दम तक। ये जो शरीर है बहुत पाप किए इसने, तपाना होगा इसको, कण कण में विकार भरे हैं, अभी इसको सफल करना होगा। अच्छा, ओम शांति।